اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
جی میں خوشی اور لطف پر سیریز کر رہی ہوں اور ہم زندگی کا لطف اٹھانے پر غور کر رہے ہیں، نہ کہ صرف زندگی کو گزارنا یا بسر کرنا بلکہ واقعی اس کا مزہ لینا، نہ صرف چھٹیوں کا یا پھر خریداری کا کہ جب آپ نئے کپڑے لینے جائیں یا تب جب آپ کو کام پر نہ جانا ہو، بلکہ اگر ہم چاہیں تو اسی روزمرہ کی معمولی زندگی کا جس میں بہت مرتبہ ہمارے لیے بوریت بھی ہے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ہم سب کو بہت سارے کام بار 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 کرنے پڑتے ہیں، لیکن کل رات میں نے سکھایا کہ ہر ایک معاملے میں چاہے آپ کو اس سے کتنا ہی خوف آتا ہو یا آپ وہ کام نہ کرنا چاہتے ہوں یا آپ کو وہ پسند نہ ہو یا کسی بھی چیز کا لطف اٹھانے کا سب سے کارآمد طریقہ یہ ہے کہ اس میں شکر گزاری کی تلاش کی جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کل رات بھی بتایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں کپڑے دھونا بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے وہ دن بہت برا لگتا ہے جب کپڑے دھونے پڑے۔ تو آپ اس سوچ کو یہ کہہ کر بدل سکتے ہیں، خدا کا شکر ہو میرے پاس کپڑے ہیں۔ دیکھیں بہتات کے باعث ہم نے شکر گزاری کو ترک کر دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس ہیں شکر گزار دل سے شکر گزار نہیں ہوتے۔ مطلب ہمیں بہت شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قدموں پہ چل کر اس جگہ آ سکیں اور تمام دن یسوع کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں، کسی بھی گرفتاری کے خوف کے بنا کہ ہم نے ایسا کیا۔ لیکن ہم ابھی بھی بہت سے لوگوں کی زندگی کے حالات سے واقف نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ میں نے کل رات بتایا کہ میں صبح اٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ مجھے ذرا وقت لگتا ہے، کوئی مجھے تھوڑی کافی دے، ایک گھنٹے کا وقت دے اور تھوڑا سا آرام اور یسوع کے ساتھ ایک گھنٹہ، تاکہ میں ذرا معقول رویے اور محبت سے دوسروں کے ساتھ پیش آ سکوں۔ سو جب صبح جاگنے کے بعد میں لیٹی ہوتی ہوں تو کبھی کبھی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بستر سے اٹھوں، بالکل اٹھنا نہیں چاہتی۔ آپ جانتے ہیں میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اس کے بجائے میں کہوں گی کہ مجھے خوشی ہے کہ میرے پاس پاؤں ہیں، کہ میں فوراً اس بیڈ سے نکل سکتی ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، میں اپنے گھر میں گھوم پھر سکتی ہوں اور خود جا کر اپنے لیے کافی بنا سکتی ہوں، اپنے صوفے پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ سکتی ہوں۔ اور میں پھر یہی بات کہہ رہی ہوں، اگرچہ آپ کل رات بھی یہی بات مجھ سے سن چکے ہیں، کیونکہ میں واقعتاً ایمان رکھتی ہوں کہ یہ زندگی کا لطف اٹھانے کا ایک گر ہے۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات تلاش کریں جس کے لیے آپ شکر گزاری کر سکیں۔ کتنے میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ یوحنا 10:10 بہت طاقت اور حوالہ ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا۔ اور ہم یہی رک کر بس اتنے ہی حصے پر بات کر سکتے ہیں کہ میں آیا، کیا یہ زبردست نہیں کہ شیطان جس کوشش میں لگا ہے یسوع اس کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، نہ صرف پاؤ بلکہ کثرت سے پاؤ اور اس کا لطف اٹھاؤ اتنا کہ پیالہ لبریز ہو جائے۔ چونکہ زندگی کا زیادہ تر حصہ معمولی ہے، سو ہمیں سیکھنا ہے کہ ان باتوں کا لطف کیسے اٹھائیں جنہیں باقی لوگ معمولی اور بوریت زدہ سمجھتے ہیں، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس پر ہم کچھ دیر بعد مزید بات کریں گے، لیکن کسی بھی کام کو کرنے کی وجہ ہمیں اپنی زندگی کا لطف اٹھانے یا نہ اٹھانے سے گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کام پر صرف تنخواہ لینے جاتے ہیں تو شاید ہی آپ اپنے کام کا لطف اٹھا سکیں، لیکن اگر آپ اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں कि खुदा आपको वहाँ पर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा, और आप समझते हैं कि खुदा ने आपको उस जगह पर इसी काम के लिए रखा है, और आप ईमान रखते हैं कि आप यहाँ किसी मकसद से हैं, तो इससे चीजें मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगी और फर्क नजर आने लगेंगी। हमारे बहुत से मसाइल की वजह हमारी सोच और बातचीत है। मैं दरअसल इमसाल पर एक किताब लिख रही हूं, जो कि एक मुश्किल मगर एक दिलचस्प काम है। मैंने तय किया है कि हर बाब को बारी बारी लिया जाए, और इमसाल में चीजों को बहुत ज्यादा दोहराया गया है, जिससे सिर्फ यही साबित होता है कि हमें बातों को बार 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 ध्यान से और बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। लेकिन इमसाल में जबान के मुतालिक से सैकड़ों हवाला जात मिलते हैं, और इमसाल मिलती हैं नादान आदमी की बातें और दाना शख्स की बातें। और ये बड़ा दिलचस्प है कि बाइबल में हमारी सोच और हमारे अल्फाज की अहमियत पर जोर दिया गया है। अब आप सब लोग मेरी इस बात को गौर से सुने, और मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा की मदद से हम इन दोनों ही चीजों को काबू कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस बात को समझते हैं कि जिन बातों को आप अपने जहन में आने की इजाजत देते हैं उनका आपकी खुशी या उदासी के साथ गहरा ताल्लुक है, ओके, अगर आप सारा दिन बैठकर बेकार सी बातें सोचते रहेंगे, तो फिर चाहे आपके पास कुछ भी हो या आप कुछ भी कर लें, आप उसका लुत्फ नहीं उठाने पाएंगे, क्योंकि हमारी हकीकी जिंदगी हमारे अंदर है। मैं आज आपसे अंदरूनी जिंदगी पर बात करना चाहती हूँ। जरूरी है कि आप अपने अंदर के हालात से राबता कायम करें, क्योंकि हम खुद को कपड़ों में ढांप कर चर्च में ला सकते हैं और हम कह सकते हैं कि खुदावंद की तारीफ हो, और हम हर बात पर मुस्कुरा सकते हैं और तालियां बजा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हकीकतन ऐसे ही हैं। आमीन। आप बाकी सबसे अपनी असलियत छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते, ना अपने आप से छुपा सकते हैं। हम किसी को देखकर मुस्कुराते और ये सोच सकते हैं कि मैंने इससे ज्यादा अहमकाना दिखाई देने वाला लिबास जिंदगी में कभी नहीं देखा। खुदावन की तारीफ हो, आज आपको देखकर अच्छा लगा। मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त है कि हम के सच्चाई को अपनाएं, और सच्चाई को अपनाने से मेरी मुराद ये नहीं कि आप किसी को कह दें कि ये लिबास तुम पर बड़ा ही अहमकाना लग रहा है। मेरा मतलब है कि हमें समझने की जरूरत है कि हम जो सोचते हैं दरअसल वही हम है, ना कि वो जो होने का हम ढोंग करते हैं, अपनी सोच के ताबे रहते हैं। और बाइबल इमसाल 18 बाब में बताती है कि हम अपने अल्फाज से शेर होते हैं। आपने ये जुमला सुन रखा है, आप अपने अल्फाज से शेर होते हैं। देखें इमसाल 18 बाब में लिखा है हम अपनी जबान का फल खाते हैं। देखें खुशी हमारे अंदर है। आपको खुश रहने के लिए खुदा से ये दुआ करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये दुआ करने की जरूरत है कि आप समझ जाएं कि क्या है जो आपकी खुशी को रोकता है। खुशी आपके पास पहले से, हम बहुत सारा वक्त वो चीजें मांगने पर लगा देते हैं जो पहले से हमारे पास हैं। हमें ज्यादा वक्त ये सोचना है कि अगर कुछ मेरे पास है तो मैं उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, इसराइलियों के दुश्मन बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से उन पर हमला करते थे, उन्हें परेशान करते थे, जिसमें से एक था कि वो उनके कुओं को पत्थरों से भर देते, यहां तक कि वो उनमें से बिल्कुल पानी ना निकालने पाते। सो मैं चाहती हूं कि आज आप जरा खुद पर गौर करें, यूं समझें कि आप एक कुआं हैं, और यीशु में नई पैदाइश की वसीला वो आपके अंदर रहता है। सो अगर वो रहने आया है तो जो कुछ उसमें है वो सब कुछ उसके साथ आया है। हमारे पास रूह के फल हैं, हमारे पास इत्मीनान है। बाइबल में यूहन्ना 14:27 में लिखा है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु ने वसीयत में अपना इत्मीनान हमारे नाम लिखा। हम में रूह के फल हैं प्यार, खुशी, इत्मीनान, सबर, भलाई, रहमदिली, आजिजी। हाँ, आपके पास है, इनके सारी तमाम खूबसूरत बातें आपके पास है। जब्ते नफ्स है, सिर्फ इसलिए कि आप उसे इस्तेमाल नहीं करते मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं है। सो आप ये कहना छोड़ दें कि मुझ में जब्ते नफ्स नहीं है, आप में है। आप सच क्यों नहीं बोलते कि आपको खुद पर बहुत इख्तियार है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। सो आपके पास खुशी है, लेकिन शैतान आप पर हसद और जलन के पत्थर फेंकता है, और फिक्र के पत्थर और नदामत के बड़े पत्थर, और ऐसी ही तमाम चीजें हमारे कुएं में डालता है, जब तक कि तमाम भली चीजों का रास्ता ना रुक जाए। सो शायद हमें खुदा से उन सब चीजों के लिए दुआ करने के बजाय जो पहले ही हमारे पास हैं, खुदा से दरख्वास्त करने की जरूरत है कि हमें वो चीजें दिखाए जो इनको रोकती हैं, और उसकी मदद से एक एक करके उन्हें हटाना शुरू करें। एक काम जो दाऊद ने किया जब वो बादशाह बना, कि उसने कुओं को रवा किया, और मुझे लगता है आज का दिन कुओं को रवा करने का दिन हो सकता है। हालेलुया, ठीक है, जैसे आदमी के दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। इम्साल 23:7 बड़ा जबरदस्त हवाला है। अगर हम मसाइल और उदासी की बातों पे या मनफी चीजों पे गौर करते हैं तो इससे हमारी खुशी पर बुरा असर होता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूं जिससे आपकी खुशी की राह खुलेगी, और वो उम्मीद है। उम्मीद इतना ताकतवर लफ्ज है, और ये वो उम्मीद नहीं जैसा कि दुनिया समझती है कि हाँ मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा या नहीं पता नहीं। नहीं, उम्मीद एक जोशीली तवक्को है कि मेरे साथ किसी भी लम्हे कुछ अच्छा होने वाला है। उम्मीद आपकी तवक्कोआत से मुताल्लिक है। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप जिंदगी से क्या तवक्को करते हैं? आज आपकी क्या तवक्को है? जानते हैं बहुत सारे लोग कोई तवक्को नहीं रखते, वो कहते हैं देखते हैं, क्या पता, देखते हैं, या फिर या वो इंतहाई मनफी होकर बुरी बातों के होने की तवक्को करने लगते हैं। और मैं ऐसी थी कि मेरे साथ जिंदगी में इतने बुरे वाकयात पेश आए कि मेरा मामला कुछ ऐसे था जैसे बाइबल में बुरे अय्याम का नाम दिया गया है, और मेरे दिल में हमेशा यही खदशात रहते कि अगली खौफनाक बात कौन सी है जो पता नहीं मेरी जिंदगी में होने वाली है। और कभी कभी हमारे साथ इतना बुरा हो चुका होता है कि हम उम्मीद करने से डरते हैं, क्योंकि आप ना उम्मीदी का मुंह फिर से नहीं देखना चाहते। अब गौर करें, लेकिन उम्मीद ईमान के लिए भी जरूरी है। बहुत से लोग ईमान रखने की कोशिश में हैं लेकिन उनके पास उम्मीद नहीं है। सो इसे आसान बनाने के लिए समझ लें कि ना उम्मीदी एक मनफी रवैया है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन देखिए उम्मीद एक जोशीला मजबूत रवैया है जो कहता है मेरा ईमान है कि खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, और मुझे इस बात की तवक्को है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। सो आप ना उम्मीदी के तमाम पत्थरों से छुटकारा पाना चाहते हैं। रोमियो 5 उम्मीद के बारे में बताता है। रोमियो 5:2-5 यहां ये लिखा है, जिसके वसीला से, जिस यानी यकीनन मसीह के वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई, यानी खुदा की मेहरबानी तक, जिस पर मजबूती और पुख्तगी से कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फखर करें, उसके जलाल का तजुर्बा करते और लुत्फ उठाते हुए। अब यहां लफ्ज जलाल का मतलब खुदा की फजीलत का मुकम्मल जहूर है। सो अगर हम गौर करें, यहां इसका मतलब यह है कि हम उस ईमान के वसीला खुशी मना सकते हैं कि हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। अपने ख्वाबों को कभी भी मरने ना दें। अब आप ये ना सोचें कि चूंकि अब तक नहीं हुआ तो शायद अब कभी भी नहीं होगा। आइए हम सब रूहानी तौर पर जिद्दी बने। वैसे तो आप दूसरे कामों में हर तरह से जिद करते हैं, सो आए रूहानी तौर पर जिद्दी बने और कहें, नहीं खुदा, तूने अपने कलाम में वादा किया है और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक अपनी जिंदगी में उसे जाहिर होता हुआ ना देख लूं। और दर हकीकत खुदा को यह बात पसंद है। अब जरा अगली आयत भी देखें, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फखर करें। कब? एक मर्तबा फिर, ठीक है, तब नहीं जब मुसीबतें खत्म हो जाएं, तब नहीं जब छुट्टियों का वक्त हो, बल्कि तब खुशी से भरे रहें जब आप कपड़े धो रहे हों, तब खुशी मनाएं जब आप गार्डन में घास काट रहे हो, जब प्रिंसिपल आपको कॉल करके स्कूल बुलाए तब आप खुशी मनाएं। आप जानते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी खुशी को हर रोज चुराने की कोशिश करती हैं। मतलब दुनिया ऐसी बातों से पुर है जो आपकी खुशी को निचोड़ लेती हैं। ऐसी चीजें हैं और ऐसे लोग हैं कि जिनकी जिंदगी का मकसद ही यह है कि आपको पस्त और लाचार कर दें और देखें कि वो आपको कितना उदास कर पाती हैं। और मैं इस मकाम पर पहुंच चुकी हूं जहां से खेल का बेहद लुत्फ आ रहा है, क्योंकि शैतान जीतने वाला नहीं और मैं खुशी से भरी रहूंगी। आए अब खुशी से भर जाएं और मुसीबतों में भी फख्र करें और दुखों में खुशी मनाएं। ओ, अब गौर करें और मुसीबतों में भी फख्र करें और दुखों में खुशी मनाएं। ये जानकर देखें हम अपनी तमाम तर मुसीबतों में भी खुशी मना सकते हैं अगर हम ये जानें कि खुदा उन्हें हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करने को है। अब आगे लिखा है, ये जान करके मुसीबत और तंग हाली से सबर और बर्दाश्त पैदा होती है। यही वजह कि पौलुस कैद में भी खुशी से रहा, क्योंकि जो उसने रोमियो 8 में लिखा था वो वाक्यतन उस पर ईमान रखता था, जैसा दर्ज है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, उनके लिए जो उसके मकसद की खातिर बुलाए गए हैं। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर आपका रवैया ऐसा मजबूत है। और पता है, इस वक्त शायद कोई सोच रहा हो कि तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी मुश्किलात हैं। देखे, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन मैं आपको शर्तिया कह सकती हूं कि इस जगह पे कोई ना कोई ऐसा बैठा है जिसका मसला आपसे बड़ा है। और सबर से पुख्तगी पैदा होती है, यानी पुख्ता ईमान और पुख्ता रास्तबाजी और ऐसी पुख्तगी से अब्दी निजात की पुर मुसरत और जुरत मंदाना उम्मीद की आदत पैदा होती है। और मैं चाहती हूं कि मुझे जिंदगी में खुश रहने की आदत हो, ना कि उसके लिए मेहनत करनी पड़े या फिर किसी मौके का इंतजार हो। आप में से कितने लोग इतना खुश होना चाहते हैं जितना पहले कभी नहीं हुए, और कितने इस बात से बेहद खुश होंगे कि अगर मैं जो आज कह रही हूं वो कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, और मैं यहाँ खड़ी होकर सिर्फ रूहानी नारेबाजी नहीं कर रही। लेकिन आप में से कितने वाकई इस बात पर ईमान रखते हैं कि हर एक काम जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं उसका लुत्फ उठाना हकीकी तौर पर मुमकिन है? देखें, मेरा आपके साथ गुजरने वाला वक्त बहुत ही अहम है। मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि खुदा ने मुझे इस हवाले से बहुत कुछ सिखाया है, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका जो भी मसला रहा है वो मसला मेरा भी रहा है और मैं उसमें से गुजरी हूं। मतलब मुझे दुख मिला, मैं जख्मी थी, मेरे साथ बदसुलूकी हुई, मुझे छोड़ दिया गया, मैं बहुत मनफी, झगड़ालू और बदमिजाज, जिद्दी, बदगुमान और पता नहीं क्या क्या। मतलब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप कितने बुरे हैं, आप मुझसे बुरे नहीं हो सकते। अगर आप मेरे रवैये की बात करें तो मैं अब बिल्कुल भी वैसी नहीं रही। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल सच है कि खुदा हमें बदल देता है, वो हमें तब्दील कर देता है, वो हम सबको बदलने की कुदरत रखता है। और अगर हम कलाम पर कायम रहें तो देखें, मुझे नहीं पता कि आप ये बात जानते हैं या नहीं कि आपका आज यहां होना किस कदर अहम है। आज इस पूरे दिन में आप क्या सीखेंगे, और अगर आप कल रात भी यहां थे तो आपने तकरीबन 23 घंटे यहां गुजारे हैं, और मैं आपको बताती हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे जो कि आप अपने घर के सोफे पर लेटकर ड्रामे देखने से बिल्कुल भी नहीं सीख पाते। ये वो बातें हैं जो आपके साथ रहेंगी, बच्चों के साथ वक्त गुजारने की वो छोटी सी नसीहत भी, और पता है सिर्फ एक ये छोटी सी बात आपके बच्चों में से कुछ को बदल कर रख देगी अगर आप घर जाकर इस पर अमल करने लग जाएं। और मैं आकर ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदा का कलाम आपके लिए क्या कर सकता है, और मेरा ईमान है, मैं पूरे दिल से ईमान रखती हूँ कि आप हर उस काम का जो आप करते हैं लुत्फ उठाना सीख सकते हैं अगर मेरे बताए हुए इन उसूलों पर अमल करें। हमारे टेलीविजन प्रोग्राम का नाम है रोजमर्रा जिंदगी का लुत्फ उठाना, क्योंकि 50 की होने से पहले तक मैंने जिंदगी के लुत्फ को जाना ही नहीं था, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, और मैं चाहती हूँ कि आप हर तरह की सूरत हाल में जहाँ तक हो सके खुश रहें और जल्द से जल्द शैतान को पागल करना शुरू करें। और आज यहाँ भी इस सोच के साथ ना बैठे कि घर जाके क्या होगा, क्योंकि मैं तो अपना सारा काम वहीं छोड़ आई हूँ। उदासी और बेदिली आपका पीछा करेंगी, लेकिन अपने जज्बात से गुफ्तगू करना सीखें, अपने जज्बात को काबू में करें और उन्हें खुद पर इख्तियार ना जमाने दें। दाऊद जुबूर 42 की 5 और 11 और 43 की 5। जरा जरा से वक्फे के बाद उसने एक ही बात को 3 बार दोहराया, बिल्कुल उसी बात को, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, खुदावन से उम्मीद रख। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, खुदावन से आस रख। जी हां, हमेशा भलाई की आस रखें। कुछ अच्छा होने की तवक्को करना इतना ही आसान है जितना कि यह यकीन रखना कि कुछ बुरा हो जाएगा। दर हकीकत भी उससे कई गुना ज्यादा आसान है, क्योंकि अच्छी बातों की बनिस्बत मनफी बातों के लिए आपको ज्यादा कुव्वत खर्च करनी पड़ती है। आप सिर्फ मजबूत रहने से शैतान के होश उड़ा सकते हैं। कितने मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम ज्यादातर ऐसे ही रवैये के साथ जीते हैं कि चलो देखते हैं। यसाया 30 की 18 बहुत बहुत ही कमाल का हवाला है, काफी तवील है, सो आपको बेहद तवज्जो के साथ सुनना पड़ेगा। तो भी खुदावन शिद्दत से इंतजार करता है। इंतजार का मतलब क्या है? तवक्को करना, राह देखना ताकि वो तुम पर मेहरबानी करे। लिखा है कि वो जो खुदावन का इंतजार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बस जाकर कुर्सी पर बैठ जाते और कुछ नहीं करते। मतलब ये है कि आप भले कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन आप खुदा के आने की तवक्को रखते हैं कि वो किसी भी लम्हे आ जाएगा और आपकी जिंदगी में कुछ जबरदस्त कर देगा। खुदावन शिद्दत से इंतजार करता है, तवक्को करता है, राह देखता है ताकि वो तुम पर मेहरबानी करे। वो तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा और तुम पर शफकत करेगा, क्योंकि खुदावन आदिल खुदा है। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करता है। हालेलुया। गौर से सुने, अब हमारी बारी है। मुबारक है वो जो खुश हैं, खुशहाल हैं, काबिले रश्क हैं, वो सब जो उसका इंतजार करते हैं, उसकी राह देखते और उसकी आस रखते हैं, उसकी फतह की, मेहरबानी की, उसके इत्मीनान और खुशी और उसकी बेमिसाल और लाजवाल रफाकत की। और अब देखें और गौर करें, सो खुदा हमारा इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है कि वो हमारे साथ भलाई करे, और वो उनके साथ ही भलाई कर सकता है जो उसका इंतजार करते हैं और उसकी आस रखते हैं कि वो उन पर मेहरबानी करे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो आप हैं या कोई और है।